ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन शुरू। सुशासन और आर्थिक समृद्धि की जनचाहना को पूरा करने में सदन को सशक्त भूमिका निभानी चाहिए। नेताओं का जोड़। सभामुख पद के लिए इसी चैत 22 गते होगा चुनाव। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल को सभामुख उम्मीदवार बनाने का किया निर्णय। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के लिए व्यवसायी दीपक भट्ट गिरफ्तार। और ईरान के साथ जारी युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी ने राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और विधि के शासन की स्थापना सहित जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में नवगठित प्रतिनिधि सभा सक्षम होगी ऐसा विश्वास व्यक्त किया। आज की पहली बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने नवगठित प्रतिनिधि सभा से बड़ी आशा रखी है, इसलिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि शासन प्रणाली की संस्कृति और परंपरा में परिवर्तन भी जनता की इच्छा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र के अभ्यास का सर्वोच्च मंच प्रतिनिधि सभा है और जन अपेक्षा के अनुसार परिवर्तन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रचनात्मक सहयोग आवश्यक है। बैठक में पार्टी के आधार पर बोलते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद रवि लामिछाने ने कहा कि जनता के जनादेश की जिम्मेदारी काम के माध्यम से पूरी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता ने उन्हें सिंह दरबार चलाने के लिए नहीं बल्कि उसे बदलने के लिए वोट दिया है और उसी अनुसार काम शुरू किया जा चुका है। उन्होंने व्यावसायिक वातावरण बनाने, जातीय और लैंगिक भेदभाव समाप्त करने, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक में नेपाली कांग्रेस के सांसद भीष्मराज अंगदेम्बे ने सहमति, सहयोग और सुशासन के माध्यम से नागरिकों में आशा और विश्वास पैदा करने पर जोर दिया। नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता राम बहादुर थापा ने जन आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। नेकपा सांसद वर्षमान पुन ने कहा कि उनकी पार्टी सदन में आलोचनात्मक पक्ष की भूमिका निभाएगी। श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हर्क शाम्पांग राय ने प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए सरल नियम बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद ज्ञान बहादुर शाही ने सरकार के जनता के प्रति जवाबदेह बनने और कानून का प्रभावी कार्यान्वयन करने की अपील की। स्वतंत्र सांसद महावीर पुन ने विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करने की आवश्यकता बताई। आज की बैठक में गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने 3 अध्यादेश पेश किए। इनमें नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2082, प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव संशोधन अध्यादेश 2082 और नेपाल विशेष सेवा तृतीय संशोधन अध्यादेश 2082 शामिल है। गृहमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय से हटाकर गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक चैत 22 गते रविवार सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर सांसदों ने देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, समावेशिता और जनता के हित सुनिश्चित करने के लिए तीनों स्तर की सरकारों के बीच समन्वय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर जोर दिया। सांसदों ने कहा कि सरकार के 100 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक, रोजगार, कूटनीतिक और कृषि जैसे क्षेत्रों की समस्याओं का दीर्घकालीन और प्रभावी समाधान आवश्यक है। बैठक में राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए चैत 23 गते सोमवार का दिन तय किया गया। अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने महासचिव पदम प्रसाद पांडे को चुनाव कार्यक्रम की सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय सभा की विभिन्न समितियों के रिक्त सभापति पदों के चुनाव के लिए चैत 24 गते मंगलवार तय किया गया है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक चैत 22 गते रविवार दोपहर 12:15 पर होगी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने प्रतिनिधि सभा के सभामुख पद के लिए पार्टी के उपसभापति डोल प्रसाद डीपी अर्याल को प्रस्तावित करने का निर्णय किया है। सिंह दरबार में आज हुई रासोपा के संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने द्वारा रखा गया यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभामुख पद के चुनाव के लिए इसी चैत 22 गते रविवार सुबह 11 बजे प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए इसी चैत 23 गते को होने वाले निर्वाचन के लिए संघीय संसद सचिवालय ने कार्यतालिका प्रकाशित किया है। आज की सभा की बैठक में अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल के निर्देशानुसार सचिवालय के महासचिव पदम प्रसाद पांडे ने सूचना जारी करते हुए बताया कि उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए जाने संबंधी प्रस्ताव की सूचना चैत्र 22 को दोपहर 2:30 के लिए से 3:30 तक सिंह दरबार स्थित सचिवालय में पंजीकरण के लिए समय निर्धारित किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय ने भ्रष्टाचार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हुए सुशासन को उच्च प्राथमिकता देने का निर्देश जारी किया है। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव सुमन राज अर्याल ने सभी मंत्रालयों, आयोगों और कार्यालयों के सचिवों को पत्र भेजकर सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन और खरीद प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। पत्र में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा कार्यभार संभालने के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक से पारित 100 कार्य योजनाओं से युक्त सुशासन के मार्गचित्र के आधार पर नागरिकों को महसूस होने वाले स्तर तक सुशासन और सदाचार स्थापित करने के लिए सभी निकायों को आवश्यक पहल करनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता सार्वजनिक निकायों में होने वाले नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है। पत्र में सार्वजनिक पद के दुरुपयोग को रोकते हुए पारदर्शिता, निष्पक्षता और आचार संहिता का कड़ाई से पालना करने, कर्मचारियों को दक्ष और ईमानदार बनाने तथा नागरिक मैत्री सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसी तरह महिलाओं, बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक सेवा में प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। निर्देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ाने, आकस्मिक निरीक्षण करने, अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने तथा कार्यालय प्रमुख को जिम्मेदार बनाने का भी उल्लेख किया गया है। संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी अनुसंधान के क्रम में व्यवसायी दीपक भट्ट को आज प्रहरी ने नियंत्रण में लिया है। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीबीआई के टोली ने काठमांडू के गैरी धारा क्षेत्र से उनको नियंत्रण में लिया है। यह जानकारी प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठ ने दी। ब्यूरो संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी विषय में उनके ऊपर अनुसंधान कर रही है। नेपाल पुलिस ने बिचौलिया से मुक्त नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह को प्रभावी बनाने की योजना के साथ कार्य प्रारंभ किया है। इसके लिए पुलिस ने देशभर अपने अधीनस्थ निकायों को परिपत्र जारी कर कार्रवाई आगे बढ़ाई है। प्रचलित कानून के कार्यान्वयन द्वारा विधि के शासन की सुनिश्चितता करते हुए जेंजी आंदोलन की भावना और नई सरकार के गठन के बाद देश के प्रशासनिक, राजनीतिक और सेवा प्रवाह के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से पुलिस अपनी भूमिका आगे बढ़ा रही है। यह बात पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता अवि नारायण काफ्रे ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अपने रणनीतिक लक्ष्यों के काफी करीब पहुंच चुका है और जल्द ही इस युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि अमेरिका अपने सहयोगियों को किसी भी हालात में नुकसान नहीं होने देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर चलाए जा रहे अभियान में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना कमजोर पड़ गई है और कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को पाषाण युद्ध में पहुंचा देंगे। ट्रंप ने कहा कि इस अभियान का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका बहुत जल्द अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस युद्ध में पहले से ज्यादा मजबूती स्थिति में है और दुश्मन लगातार कमजोर हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर और कड़े हमले करेगा और बहुत जल्दी मिशन पूरा कर देगा। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों, खासकर इसराइल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन शुरू। सुशासन और आर्थिक समृद्धि की जनचाहना को पूरा करने में सदन को सशक्त भूमिका निभानी चाहिए, नेताओं का जोर। सभामुख पद के लिए इसी चैत 22 गते होगा चुनाव। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल को सभामुख उम्मीदवार बनाने का किया निर्णय। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के लिए व्यवसायिक दीपक भट्ट गिरफ्तार और ईरान के साथ जारी युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।